आस्तिक ने अपने एक हाथ से अरुणिमा के बालों को साइड किया और उसकी गर्दन पर अपने नाक से रगड़ते हुए उसकी मीठी मीठी खुशबू को महसूस करने लगा। लेकिन अरुणिमा आस्तिक के इस बर्ताव से कांपने लगी थी। उसके शरीर में अजीब सी वाइब्रेशन होने लगी थी। आस्तिक ने धीरे से अरुणिमा को देखकर कहा, तुम ठीक तो हो ना? अरुणिमा में थोड़ी सी हिम्मत आ गई, न जाने कहां से आई पर आ गई थी। उसने डरती हुई आवाज में आस्तिक की तरफ चेहरा घुमाकर देखकर कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आस्तिक अपनी छोटी आंखें करते हुए अरुणिमा को देखने लगा। जाहिर तौर पर उसने अरुणिमा को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अरुणिमा के सवाल का इंतजार कर रहा था। अरुणिमा ने आस्तिक से कहा, क्या ये सच है कि आज आपसे जो कोई भी कुछ भी मांगता है तो आप उसकी वो इच्छा पूरी करते हैं? अचानक से आस्तिक के हाथों की पकड़ अरुणिमा के कमर पर ढीली हो गई और वो हैरान नजरों से उसे देखने लगा। क्या अरुणिमा के मन में कुछ चल रहा है? अरुणिमा ने आस्तिक को देखते हुए कहा, बताइए ना राजा साहब, क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरुणिमा बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ आस्तिक को देखकर ये कह रही थी, लेकिन आस्तिक के चेहरे पर घबराहट की एक लकीर उभर आई थी। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, ये मुझसे क्या मांगना चाहती है? कहीं मुझसे तलाक तो नहीं मांगेगी? जाहिर सी बात है, वो मुझसे तलाक ही मांगेगी। मैंने जो भी उसके साथ किया है उसके बाद उसका तलाक मांगना तो बनता है। अगर वो मुझे छोड़ना चाहेगी तो मैं क्या करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझे नहीं छोड़ सकती है। उसे हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन अगर उसने ये मांगा तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आज के दिन कभी किसी को कुछ भी देने से मना नहीं करता हूँ। आस्तिक ने थोड़े गुस्से और थोड़ी परेशानी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ अरुणिमा को देखकर कहा, क्या बात है, तुम्हें क्या पूछना है मुझसे? अरुणिमा ने संकोच करते हुए कहा, अभी नहीं राजा साहब, अभी आप पूजा कर लीजिए, मैं आपसे इस बारे में रात में बात करूंगी। लेकिन आस्तिक के मन को चैन कहाँ मिल रहा था। उसने गुस्से में पूछा, नहीं, तुम्हें जो भी कुछ पूछना है अभी पूछो। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम अभी कुछ पूछोगी या फिर रात में? इससे तुम्हारे सवाल तो नहीं बदल जाएंगे ना? पर अरुणिमा ने अपनी साड़ी पर पकड़ बनाते हुए कहा, नहीं राजा साहब, इस समय ये सवाल करने का सही समय नहीं है। आप आराम से पूजा कर लीजिए, हम रात में बात करेंगे। आस्तिक की गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ में सर हिलाता है और कहता है, ठीक है। लेकिन आस्तिक अभी भी अरुणिमा की तरफ खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पा रहा था। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर अरुणिमा की कमर को पकड़कर अपनी बाहों में कस लिया। अरुणिमा थोड़ी देर के लिए छटपटाई, लेकिन फिर उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। पर आस्तिक देख सकता था अरुणिमा उसकी तरफ नहीं देख रही है, वो किसी दूसरी ही दिशा में देख रही है। आस्तिक ने अपने दूसरे हाथ से अरुणिमा के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया। अरुणिमा की पलकें झुकी हुई थी। आस्तिक ने धीरे से अपने हाथों से अरुणिमा के चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। अब शायद से ज्यादा आस्तिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अगले ही पल अरुणिमा के होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। अरुणिमा एक पल के लिए कांप जाती है। उसे लगा आस्तिक फिर उसके साथ जबरदस्ती करेगा, लेकिन आस्तिक की ये किस और समय के मुकाबले आज बहुत ही अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस किस में कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि जब अरुणिमा साथ नहीं दे रही थी तो आस्तिक सिर्फ अरुणिमा के होठों को महसूस कर रहा था। उसने जबरदस्ती अरुणिमा के होठों को काटना शुरू नहीं कर दिया था। आस्तिक का किस धीरे धीरे डीप होता जा रहा था। जब आस्तिक अपनी सांसों को महसूस करने लगा तो उसने अरुणिमा के को छोड़ दिया। अरुणिमा भी हाफ रही थी। आस्तिक ने अरुणिमा को दुल्हन की तरह अपनी गोद में उठा लिया और अरुणिमा ने अपने हाथ आस्तिक के गर्दन पर लपेट दिए। वो उसे लेकर सीधे बेड पर आता है और उसे आराम से बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, क्या तुम डर रही हो? अरुणिमा घबराई हुई नजरों से आस्तिक को देखती है और हाँ में सर हिलाती है। आस्तिक देख सकता है कि अरुणिमा डर से कांप रही है। जाहिर तौर पर उसने जितनी बार भी अरुणिमा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे उसमें अरुणिमा की मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन आस्तिक की जबरदस्ती हमेशा उसे कमजोर कर देती थी। और आज जब वो इतने प्यार से अरुणिमा के साथ पेश आ रहा है तो जाहिर सी बात है अरुणिमा को तो यही लगेगा कि आस्तिक फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। आस्तिक ने अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आस्तिक अरुणिमा को कंफर्टेबल कराना चाहता था, लेकिन उसे भी इस वक्त अरुणिमा की बहुत जरूरत थी। इससे पहले कि आस्तिक आगे बढ़ पाता या फिर अपनी किसी हरकत को अंजाम दे पाता, दरवाजे पर दस्तक होती है। आस्तिक चिढ़ते हुए दरवाजे की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। शायद अरुणिमा ने दरवाजे की आवाज़ नहीं सुनी थी, क्योंकि आस्तिक के इतने गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर वह अचानक से डर से कांपने लगी। आस्तिक ने जब उसे घबराते हुए देखा तो आराम से उसके चेहरे को हाथों से सहलाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तभी बाहर से एक सेवक कहता है, राजा साहब, बाहर पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, आपको और रानी साहिबा को सब बाहर बुला रहे हैं। सेवक की बात सुनकर आस्तिक को याद आता है कि वो कमरे में तैयार होने के लिए आया था, लेकिन अरुणिमा को देखकर वो अपने लक्ष्य से भटक गया। ये लड़की हमेशा उसके दिमाग पर काबू पाने में कामयाब हो जाती है। आस्तिक बेड से उठता है और अरुणिमा को भी उठाते हुए कहता है,
जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। आस्तिक और अरुणिमा दोनों एक साथ तैयार होकर कमरे से बाहर निकलते हैं। नीचे हॉल में पूजा की सारी तैयारियां हो जाती हैं। तभी अरुणिमा देखती है कि जीवन भी आया हुआ है। प्रणाली और जीवन एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराकर कुछ बात कर रहे हैं। पूजा शुरू हो जाती है। आस्तिक और अरुणिमा पूजा में बैठे हुए थे और पंडित जी मंत्रों का जाप किया जा रहे थे। पृथ्वी एक तरफ अकेला बैठा हुआ था और कीर्ति अमृताताई के साथ बैठी हुई थी। जीवन के माता पिता सबसे पीछे की तरफ बैठे हुए थे और पूजा को देख रहे थे। प्रणाली जीवन के साथ बैठी हुई थी, लेकिन उन दोनों का ध्यान पूजा में कम और एक दूसरे की बातों में ज्यादा था। अरुणिमा अपने हाथ जोड़कर सच्चे मन से आस्तिक की माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। हालांकि वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसने इतना तो जाना ही था कि आस्तिक का अपनी माँ से बहुत गहरा रिश्ता है। अरुणिमा तो यहाँ प्रार्थना में खोई हुई थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पर दो आंखें उसे घूर रही हैं और वो अरुणिमा के पलकें, उसके नाक, उसके होंठ और उसके गर्दन को देख रही हैं।